नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ज्यादा कमाई करने वाले लोग कर का भुगतान करें और केवल गरीबों को ही सब्सिडी मिले। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह नसीहत देते हुए कहा कि यदि पाकिस्तान एक देश के रूप में काम करना चाहता है तो ऐसा करना जरूरी है। IMF प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने जर्मनी में शुक्रवार को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के मौके पर डायचे वेले के साथ एक साक्षात्कार में ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ऐसी खतरनाक स्थिति से बचने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है जहां उसे कर्ज को पुनर्गठित करने की जरूरत पड़े। समाचार पत्र डॉन के मुताबिक उन्होंने कहा, IMF पाकिस्तान के गरीब लोगों को बचाना चाहता है लेकिन अमीरों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलना चाहिए, सब्सिडी गरीब को मिलनी चाहिए। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने कहा है कि वो डिजिटल समावेशन को और मजबूत करने के लिए एक परामर्श पत्र लाएगा। इसमें उपकरणों, संपर्क और साक्षरता के तीन प्रमुख पहलुओं पर खास तौर से जोर दिया जाएगा। भारतीय इंटरनेट एवं मोबाइल संघ द्वारा आयोजित इंडिया डिजिटल समिट 2023 के मौके पर ट्राई के चेयरमैन PD वाघेला ने कहा कि इस मुद्दे पर परामर्श पत्र आने वाले महीनों में जारी हो सकता है। इस परामर्श पत्र में तीन प्रमुख पहलुओं, उपकरणों, संपर्क और साक्षरता पर ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। वाघेला ने कार्यक्रम में कहा, हम देश में डिजिटल समावेशन को और मजबूत करने के लिए एक परामर्श पत्र लाने की योजना बना रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को अपने वैश्विक जस्ता संपत्तियां बेचने की वेदांता की योजना का सरकार ने विरोध किया है। सरकार ने सौदे से जुड़े मामलों में सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की बात कही है। सरकार ने वेदांता की इकाई HZL से इन संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए दूसरे नकदी रहित तरीकों का पता लगाने को भी कहा है। खान मंत्रालय ने 17 फरवरी को HZL को लिखे पत्र में कहा, हमें भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नामित निदेशकों से पता चला है कि 19 जनवरी 2023 को हुई कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में पूर्व स्वामित्व वाली उनकी विदेशी अनुषंगी कंपनी के गठन को मंजूरी दी गई। ऐसे अनुषंगी इकाई को 298.1 करोड़ डॉलर की सीमा तक वित्त पोषण दिया जाएगा और सहायक कंपनी THL जिंक वेंचर्स लिमिटेड से TSL जिंक लिमिटेड के शेयरों का अधिग्रहण करेगी। पत्र में आगे कहा गया, हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि भारत सरकार इस तरह के किसी भी प्रस्ताव का विरोध करेगी और इस संबंध में उपलब्ध हर कानूनी रास्ते को तलाशेगी। सरकार ने गेहूं की फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। ये कदम राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र के इस अनुमान के बीच आया है कि मध्य प्रदेश को छोड़कर प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में अधिकतम तापमान फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान पिछले 7 वर्षों की औसत से अधिक था। यहां तक कि मौसम विभाग ने भी अगले 2 दिन में गुजरात, जम्मू, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान जताया है। पत्रकारों से बात करते हुए कृषि सचिव मनोज आहूजा ने कहा, गेहूं की फसल पर तापमान में वृद्धि से पैदा होने वाली स्थितियों की निगरानी के लिए हमने एक समिति का गठन किया है। उन्होंने कहा कि समिति सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने के लिए किसानों को परामर्श जारी करेगी। उन्होंने कहा कि कृषि आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति में करनाल स्थित गेहूं अनुसंधान संस्थान के सदस्य और प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधि भी होंगे। घरेलू शेयरों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का निवेश मूल्य दिसंबर 2022 के अंत में घटकर $584 अरब रह गया, जो सालाना आधार पर 11% कम है। मॉर्निंग स्टार की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ये गिरावट काफी हद तक भारतीय शेयरों से कम प्रतिफल और घरेलू शेयर बाजार से विदेशी धन की निकासी के चलते आई है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शेयरों में FPI निवेश का मूल्य दिसंबर 2021 के अंत में $654 अरब की तुलना में घटकर दिसंबर 2022 तक $584 अरब रह गया। FPI निवेश का मूल्य तिमाही आधार पर सितंबर 2022 के मुकाबले 3% बढ़ा। ये लगातार दूसरी तिमाही भी थी जब घरेलू शेयर बाजार में FPI का निवेश मूल्य बढ़ा। ऐसे में भारतीय इक्विटी के बाजार पूंजीकरण में FPI का योगदान सितंबर 2022 तिमाही के 16.97% से बढ़कर दिसंबर 2022 तिमाही में 17.12% हो गया। राजस्थान सहित कई राज्यों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को फिर स्पष्ट कहा कि मौजूदा नियमों के तहत नई पेंशन योजना में जमा पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं मिल सकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी दोनों ने यहां कहा कि अगर कोई राज्य सरकार ये अपेक्षा कर रही है कि NPS के लिए जमा किया गया पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा तो ये नामुमकिन है। केंद्र सरकार का ये स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में कहा था कि केंद्र ने एनपीएस के तहत जमा पैसा राज्य को नहीं लौटाया तो राज्य सरकार अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में हालिया गिरावट का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के लिए उस शेयर बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता जहाँ नई पेंशन योजना का पैसा लगाया जा रहा है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।